नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांड में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।